नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं दीपक और आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, खेती और किसानों का गला घोट रहा है जलवायु परिवर्तन। भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी लगभग 70% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्यों पर ही निर्भर रहते हैं। भारत के हर राज्य में किसी न किसी प्रकार की खेती होती ही है और ऐसे में बात की जाए मध्य प्रदेश की तो इसकी गिनती देश का एक बड़ा खेतीहर राज्य में की जाती है और यहाँ पर ज्यादातर खेती सोयाबीन की होती है, जिसे एक समय में पीला सोना कहा जाता था और किसानों की आमदनी अच्छी खासी होती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के समक्ष मुसीबतें खड़ी हो गई हैं और अब सोयाबीन की खेती में भारी गिरावट आ गई है, जिससे किसानों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में किसान तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए संपूर्ण भारत की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश के पिछले 30 वर्षों में 59,000 किसानों ने आत्महत्या की है। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को नुकसान हो रहा है। इसका उल्लेख हाल में ही बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 की रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण खेती से होने वाली आय में 15-25% तक कमी आने की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी समिति की ओर से तापमान को लेकर लगाए गए अनुमानों के आधार पर भारत में खेती से होने वाले आय में औसतन 15-18% तक गिरावट आ सकती है। हालांकि यह गिरावट असिंचित भूमि वाले इलाके में 20-25% रह सकती है। सर्वेक्षण के मुताबिक खेती के वर्तमान आय स्तर पर किसानों की औसत आय 3600 रुपए प्रति व्यक्ति घट सकती है। गौरतलब है कि कृषि की देश के सकल घरेलू उत्पाद में 16% हिस्सेदारी है। देश में कृषि क्षेत्र की इस हालत के लिए पर्यावरणविद और कृषि मामलों की जानकारों की माने तो इसके लिए सरकार की नीतियां और किसान दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, इसका खामियाजा देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और कृषि के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आखिर क्या क्या प्रयास किए जाते हैं।
मैं मधु आज आपको बताने जा रही हूँ कि भारत के गांवों में क्यों कम हो रही है कामकाजी महिलाओं की संख्या। वर्ल्ड बैंक की 2017 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और ब्राजील में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 65-70 है। नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक 2011-12 में भारत के गांवों में हर 100 में 24 महिलाएं कामकाजी थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में 49% ग्रामीण महिलाएं कामकाजी थीं। ये आंकड़ा 2012 में घटकर 36% ही रह गया। यानी शहरों के साथ साथ गांव में भी कामकाजी महिलाओं की भागीदारी में कमी आई है। आपने अपने घरों में देखा होगा कैसे आपकी नौकरी या कोई रोजगार ना करने वाली माँ, बहनें, बीवी थोड़े थोड़े रुपए जोड़ती रहती हैं। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो आटे चावल के डिब्बे में रुपए छुपा कर रखती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो खुद पैसे नहीं कमाती, लेकिन इन्हें जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उससे ही ये घर की कई मुसीबतें आसान कर देती हैं। ग्लोबल जेंडर के रिपोर्ट 2015 के मुताबिक महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर सूचकांक के मामले में 144 देशों में भारत 136वें नंबर पर रहा। यहाँ तक कि इस रिपोर्ट में नेपाल और बांग्लादेश भी भारत से काफी आगे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड ने विमेन्स एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक गेम चेंजर नामक कार्यक्रम में कहा था कि भारत की राष्ट्रीय आय में 27% की वृद्धि हो सकती है अगर यहाँ के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के स्तर के बराबर हो जाए। लेकिन फिलहाल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 में सामने आया है कि वित्त वर्ष 2005-06 में 36% महिलाएं कामकाजी थीं, जिनका स्तर 2015-16 में घटकर 24% पर आ गया, जबकि भारत में 2006 में महिलाओं की साक्षरता दर यानी 10 साल में महिलाओं के रोजगार में 10% की कमी और साक्षरता में 12% की बढ़ोतरी हुई है।
दोस्तों, मैं हूं किशन और आज मैं आपको बताऊंगा स्वास्थ्य सेवाओं को इलाज की कितनी है जरूरत। दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में तुरंत सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हर साल बजट पेश होने के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाली बहस सिर्फ एक आंकड़े के इर्द गिर्द सिमट जाती है। तर्क ये दिए जाते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च लगातार कम हो रहा है, नए स्वास्थ्य नीति में नीतिगत असमानता और देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर खास जोर दिया गया है। हालिया रिपोर्ट बताती है कि की प्रजनन व बाल स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवंटित रकम पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही है। राज्य में वर्ष 2011-12 में इस मद के 7,375 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए थे, जो 2015-16 में बढ़कर 9,509 करोड़ रुपए हो गए। एक ताजा आंकड़े के मुताबिक भारत स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी और रिक्तियों के दबाव से जूझ रहा है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आवंटित बजट के करीब 20% की वृद्धि की गई है। यही नहीं, इस मिशन के तहत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 52% और HR के बजट में 168% की वृद्धि की गई है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में मानव संसाधन में वृद्धि इतनी स्पष्ट नहीं दिखती।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।